आज की बात।
कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज की चर्चा में हम बाबरी मस्जिद मामले पर मध्यस्थता के ऊपर चर्चा करेंगे। बाबरी मस्जिद का विवाद दशकों पर आधारित है और अब तक इसका कोई हल निकल नहीं पाया है। अदालत से कुछ लोगों को उम्मीद थी, तो अब अदालत ने भी इसे मध्यस्थतों पर डाल दिया है। गत 8 मार्च को भारत के उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए विवाद को एक समिति के पास भेज दिया, जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला होंगे। उसके अलावा समिति में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू शामिल हैं। फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज हैं और वो जस्टिस दिवंगत जस्टिस M. फकीर के बेटे हैं। वो 68 साल के हैं। श्रीराम पंचू एक वरिष्ठ वकील और प्रसिद्ध मध्यस्थ हैं। वो द मीडिएशन चैम्बर्स के संस्थापक भी हैं। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका जन्म एक तमिल अय्यर परिवार में सन 1956 में हुआ था। अब सवाल ये है कि ये तीन लोग क्या बाबरी मस्जिद का मामला हल कर लेंगे? भारत में टीवी चैनलों पर इस पर खूब चर्चा हो रही है और फैसले का स्वागत और विरोध दोनों हो रहा है। हिंदू महासभा के बाबा नंद किशोर कहते हैं,
विरोध का मूल कारण है कि पहले भी प्रयास हुआ समझौता का, क्या हुआ? ढांक के तीन पत्ते हिंदुओं के जन भावना के साथ खिलवाड़ करने का एक साजिश है। मौका देते देते आप पृथ्वीराज चौहान को खो गए हैं। सरकार की तुष्टीकरण के नीति के कारण यह राष्ट्र विभाजित हुआ, रक्त रंजित हुआ। पुनः जो न्यायपालिका और सरकार दोनों तुष्टीकरण की नीति में लगे, हम बातचीत में शामिल नहीं।
हिंदू महासभा के वकील ने फैसले के बारे में बताया,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को मध्यस्थता के लिए 3 मेंबर्स पैनल को रेफर किया है। इस पैनल के चेयरमैन जस्टिस खलीफुल्ला होंगे, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट हैं, श्री श्री रविशंकर होंगे और श्री राम पांचू होंगे जो मद्रास हाई कोर्ट से हैं। ये 3 मेंबर्स होंगे। विद इन 4 वीक्स इन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है और पूरी मध्यस्थता कंप्लीट करनी है विद इन 8 वीक्स। जो भी फैसला आया है हम उसका अध्ययन करेंगे और फिर हमारी जो क्लाइंट है अखिल भारत हिंदू महासभा, उस पर जो भी कोर्ट का आदेश है उसका पालना तो होगा।
समिति के विभिन्न सदस्यों के बारे में भी विभिन्न प्रकार की राय है। निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम दास का कहना था,
देखिए हम चाहते थे कि मैटर संवैधानिक रहे, राजनीति ना हो। तो जो जजेस हैं वो तो स्वीकार हैं, लेकिन जिस प्रकार से श्री श्री रविशंकर जी को प्रवेश कराया गया है उसमें संभावना है कि राजनीति हो सकती है। जैसे पहले भी श्री श्री रविशंकर जी गए थे तो उसमें बहुत राजनीति हुई थी। तो हम चाहते हैं राजनीति ना हो, यह मैटर राजनीति से दूर रहे। इसमें जो बार बार नेता लोग नोट और वोट की राजनीति करते हैं वो ठीक नहीं है। संशय इसलिए है क्योंकि समाज का व्यक्ति है और हमें समाज का व्यक्ति नहीं, हमें कोर्ट का व्यक्ति चाहिए, संविधान का व्यक्ति चाहिए। समाज में राजनीति होती है और राजनीति ना हो हम ये चाहते हैं।
निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम दास। इस मामले पर मोहम्मद साजिद रशीदी के विचार भी सुन लें।
नहीं बिल्कुल, देखिए कोर्ट जिस तरह से कोर्ट का मूड आप देख रहे हैं, भाई उन्होंने बगैर किसी उसके 3 आदमियों का पैनल नियुक्त कर दिया और मैं समझता हूँ ये तीनों ही नाम शायद किसी की तरफ से सुझाए गए हों। कोर्ट ने शायद ये अपनी तरफ से किया है और इसमें दो एक खास पहलू ये है कि आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसमें जस्टिस सिबगतुल्ला थे। जस्टिस सिबगतुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नियुक्त कराया था ताकि ये फैसला कहीं ना कहीं मुसलमान इस सोच में रहे कि भाई ये हमारे पक्ष में आने वाला है, लेकिन उस लैंड को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया था और ये कहकर कर दिया गया था कि इसमें मुस्लिम पक्ष भी मौजूद है। आज जस्टिस अफीफुल्ला का इसमें आना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है कि फैसला जो है कहीं ना कहीं खिलाफ चला जाए और ये कह दिया जाए कि मुस्लिम पक्ष है इसमें।
मस्जिद मंदिर मामले पर मध्यस्थता के लिए जिन लोगों को चुना गया है उन पर अपने विचार प्रकट करते हुए AIMI के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विस्तार से बताया।
अब ये तो हाईकोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। देखिए, उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटन्ड वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए। तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाई कोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा।
अदालत के इस आदेश के बाद विवाद सुलझने की कितनी उम्मीद है? एक टीवी कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने अपने विचार प्रकट किए।
ये समझौता वार्ता ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये वार्ता पहले भी हो चुकी है और जब वार्ता हुई है तो उसका हश्र हमने देखा है। उन वार्ताओं में बार बार देखा है, 5 वार्ताएं तो मुझे ऐसी ध्यान में हैं जिनकी मिनट्स आज भी उपलब्ध हैं, शासन के पास उपलब्ध हैं, उनको आप देख सकते हैं कि कभी कभी तो पूरे साक्ष्य के साथ ना आकर के जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं वो उठकर चले जाते थे। कुल मिलाकर के वार्ताओं का हर्ष जो हुआ है वो हम सबके सामने हैं। शेख साबुद्दीन ने उस समय कहा था कि ये जब सारी चर्चाएं कर रहे हैं लेकिन अगर इसके प्रमाण मिल गए तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। भारत सरकार की ऐसा एजेंसी है, कोई पर्सनल किसी की नहीं है, उसके द्वारा भारत सरकार की निगरानी में जो वहाँ फोटोग्राफी हुई, जो वहाँ पर नमूने निकाले गए, जो खुदाई हुई, जो प्रमाण मिले, वो सिद्ध करते हैं कि 1528 से पहले वहाँ पर बब्बा भवन हिंदू मंदिर भवन भगवान राम का मंदिर था, ये तय हो गया। इसके बाद किसी ने छोड़ा नहीं, अपना दावा तो छोड़ा नहीं। तो अगर दावा अब नहीं छोड़ा है तो बार बार ये प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, मुझे लगता है इसका हश्र क्या होगा सारे देश के सामने है।
विजय शंकर तिवारी, गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा ने इस फैसले पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा।
देखिए, आज पहली बात तो वो टैग हमारे सर से हट गया कि मुसलमान तारीख बढ़वाना चाहते हैं, मुसलमान इसमें डिले कर रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार जो है इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आज वो टैग हमारे दामन से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। हम तैयार हैं कि आप बैठ करके बात कीजिए, लेकिन मध्यस्थता करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्यस्थता करेगा कौन? हम जब से जस्टिस खेहर ने कहा था, जब से हम एक गुजारिश इस मुल्क के लोगों के सामने से कर रहे हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा मसला है जिसका बैठ करके हल नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कौन करे? मैं एक बात मानता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने यह बात कही है तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए, इसलिए कि अब मामला बहुत हो चुका है पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ये मामला फैल चुका है पूरी दुनिया में कि मतलब समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसको, इस मैटर को सीरियस लें। और भाई आप क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको? लोग कहते हैं प्रधानमंत्री क्यों आ गए हो? अरे जब प्रधानमंत्री तीन तलाक पर बोल जाते हैं, सब पर बोलते हैं, तो राम मंदिर पर क्यों नहीं?
उलेमा काउंसिल के मोहम्मद नदीमुद्दीन ने इस मध्यस्थता के अंजाम पर विचार प्रकट करते हुए कहा,
देखिए बातचीत से अगर निकलना था तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। मुस्लिम परंपरा बोर्ड और शंकराचार्य के दरमियान जो बातचीत हुई थी नाकाम हो गई। नरसिम्हा राव साहब से लेकर के वाजपेयी जी तक जितने प्रधानमंत्री रहे वो सारी कोशिश किए, रास्ता नहीं निकला। मैं एक बात और ही कहता हूँ मौलाना की बात से आगे, एक बात जोड़ करके उसमें ये कह रहा हूँ कि आखिर अदालतें हैं क्यों? अगर हमारी बातचीत से मसला हल हो सकता तो मामला कोर्ट में जाता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा था कि लैंड का इशू है, अब एक जज कह रहे हैं कि आस्था का इशू है। तो मुझे लगता है कि बातचीत की बात तो करनी चाहिए मगर बातचीत से रास्ता निकलेगा नहीं, अदालत को ही कोई फैसला करना चाहिए। देखते हैं हिंदू फोर्सेस हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का मसला हल हो। चार साल से मोदी जी हैं, अब तो इलेक्शन आ रहा। अगर मोदी जी इतने ही ईमानदार होते तो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट को भेजते और सुप्रीम कोर्ट से कहते कि साल भर छः महीने के अंदर आप फैसला करिए। एक बात, सर्वदलीय एक बैठक बुलाते। मगर देखिए अगर मंदिर जिस दिन बन जाएगा भाजपा की का वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद चाहते नहीं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुसलमानों पर।
मोहम्मद नदीमुद्दीन, श्रोताओं मंदिर मस्जिद मुद्दा बहुत लंबा खिंच गया है और अब इसे ख़त्म होना चाहिए। इस नतीजे पर हमारे विचार में बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, किंतु भारत में कब इस निष्कर्ष और इस मत के अनुसार लोग कदम उठाएंगे और मस्जिद मंदिर के दुकानदारों का बहिष्कार करेंगे, इस बारे में केवल आशा ही रखी जा सकती है।